अध्याय 12 महात्मा बुद्ध के समय की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों से भी समाज के प्राचीन चार वर्णों का बोध होता है, यद्यपि इनमें वर्ण व्यवस्था की सदैव कटु आलोचना ही की गई है। दोनों धर्म जन्म के आधार पर मनुष्य की उच्चता अथवा निम्नता के निर्धारण का घोर विरोध कर रहे थे। उन्होंने कर्म को ही मनुष्य के मूल्यांकन का वास्तविक मापदंड माना था। महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा था कि आग जलाने के लिए लकड़ी का भेद नहीं देखा जाता, उसी प्रकार निर्माण के लिए भी मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। उनकी दृष्टि में कर्म से ही प्रत्येक मनुष्य छोटा बड़ा होता है। वे अपने आप को ब्राह्मण भी कहते थे। यहाँ ब्राह्मण की व्याख्या जन्म के आधार पर नहीं परन कर्म के आधार पर की गई है। जो भी व्यक्ति ज्ञानी, सदाचारी और निष्प्रह इत्यादि हो, वही ब्राह्मण है। नवीन धर्मों और पुरातन ब्राह्मण धर्म के दृष्टि कोणों में यही मौलिक भेद था। ब्राह्मण धर्म ने मनुष्य का मापदंड जन्म को माना था, परंतु नवीन धर्मों ने कर्म को। यह बात नहीं है कि विरोधी धर्म ग्रंथों ने ब्राह्मणों की सदैव निंदा ही की हो। वे विज्ञ एवं त्यागी ब्राह्मण तपस्वियों और ऋषियों की प्रशंसा भी करते हैं। इस प्रकार के ब्राह्मणों को वे वास्तविक ब्राह्मण की संज्ञा देते थे, परंतु इनके विरुद्ध समाज में बहुसंख्यक ऐसे भी ब्राह्मण थे जो सब प्रकार से गिर गए थे और नाना प्रकार के जालों में फंसे थे। आर्थिक विषमताओं के कारण ब्राह्मण बहुसंख्यक वर्ण विरोध कर्म भी करने लगे थे। जातकों में ब्राह्मण कृषि, पशुपालन, आखेट, बड़ई, जुलाहे, सपेरे आदि के कामों को करते हुए दिखाए गए हैं। 10 ब्राह्मण जातक में ब्राह्मणों के 10 कर्मों का उल्लेख है। वध्य, नौकर और गाड़ी हाँकने वाले, कर संग्रह करने वाले, भूमि खोदने वाले, फल मिठाई आदि बेचने वाले, कृषक, पुजारी, अंगरक्षक, प्रतिहारी तथा पथ प्रदर्शक, अधिकारी और राजा के नौकर चाकर। निश्चित है कि निम्न कर्मा ब्राह्मण सामाजिक दृष्टि से हीन समझे जाते होंगे। इसी पूर्व 6 शताब्दी तक भारतवर्ष के पूर्वी भाग में आर्य सभ्यता भली भांति न फैली थी, अतः ब्राह्मणों की दृष्टि में यह प्रदेश उन पश्चिमी देशों की अपेक्षाहीन था जहाँ आर्य सभ्यता भली भांति फैल चुकी थी। यही कारण है कि पश्चिमी प्रदेश के ब्राह्मण पूर्वी प्रदेश के ब्राह्मणों की अपेक्षा उच्चतर माने जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय ब्राह्मणों और क्षत्रियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा अधिक और पकड़ चुकी थी। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में अनेकशः पहले क्षत्रिय वर्ण का उल्लेख हुआ है और बाद को ब्राह्मण वर्ण का। ब्राह्मणों की भांति क्षत्रिय भी वर्ण विरुद्ध कर्मों का अनुसरण करते हुए मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में शाक्य क्षत्रिय कृषि कर्म करते हुए दिखाए गए हैं। जातकों में मालाकार, नलकार, कुंभकार आदि के काम करते हुए क्षत्रियों के उल्लेख है। ब्राह्मणों की भांति क्षत्रियों को भी अपनी रक्त शुद्धता का ध्यान था। जब प्रसेनजीत को यह पता चला कि उसकी रानी दासी थी तो उसे बड़ा दुख हुआ था, परंतु महात्मा बुद्ध के समझाने से उसने अंत में उसे वैद्य रानी का पद देना स्वीकार कर लिया था। वैश्य वर्ण बहुसंख्यक और समृद्धशाली वर्ग था। इसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए बौद्ध साहित्य में गृहपति, वणिक, सृष्टि, कुंडबिक आदि संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है, परंतु अन्य वर्णों की भांति यह वर्ण भी वर्ण विरुद्ध कार्य करने लगा था। वे जातकों में दर्जी, कुम्हार आदि के कर्मों का अनुसरण करते हुए भी दिखाए गए हैं। इस समय शूद्रों की दशा सबसे खराब थी। वे प्रायः अधिकार विहीन थे। वे नाना प्रकार के अभावों और अंकुशों से पीड़ित थे। मातंग जातक का कथन है कि एक चंडाल का घर एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर केवल इसीलिए कर दिया गया था कि अपने घर के किनारे से बहती हुई नदी से उसने अपनी दातुन फेंक दी थी और वह बहती बहती आगे चलकर किसी नहाते हुए ब्राह्मण की शिखा में उलझ गई थी। चित्त संभूत जातक में एक भीड़ क्रुद्ध होकर दो चंडाल भाइयों को इसलिए मार पीट रही थी कि उनके मार्ग में आ जाने से दो संभ्रांत महिलाओं ने मंदिर जाने का विचार छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भीड़ उनके प्रसाद वितरण से वंचित रह गई। शूद्रों के अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में हीन जाति और हीन शिपनी का भी उल्लेख आता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत बहेलिया, स्वाकार आदि आते हैं, अतः दूसरे वर्ग के अंतर्गत कुम्हार, चमार, नाई इत्यादि। इन वर्गों के अतिरिक्त समाज में एक दास वर्ग भी था, परंतु दासों के साथ समानतया दुर्व्यवहार न किया जाता था। स्त्री समाज बौद्ध साहित्य से प्रकट होता है कि इस समय स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी न थी। महात्मा बुद्ध ने प्रारंभ में स्त्रियों को संघ प्रवेश की आज्ञा नहीं दी थी। बात को अपने परम प्रिय शिष्य आनंद के बहुत कहने सुनने पर उन्होंने यह आज्ञा दे दी, परंतु इसके साथ ही साथ उन्होंने संघ में प्रवेश करने वाली स्त्रियों के लिए 8 कठोर प्रतिबंध भी बना दिए, पर भी उन्होंने कहा था कि आनंद अब धर्म चिरस्थायी न रह सकेगा। जहाँ स्त्रियाँ गृहस्थ जीवन का परित्याग कर गृहविहीन जीवन में प्रवेश करने लग जाती हैं, वहाँ धर्म चिरस्थायी न रह सकेगा। जिस प्रकार धान के खेत पर पाला पड़ जाता है तब वह अधिक नहीं टिक सकता, अथवा गन्ने की फसल लाल बीमारी से जिसमें पौधों में कीड़े लग जाते हैं मारी जाती हैं, उसी प्रकार आनंद इस सूत्र और विनय की दशा होती है। जहां स्त्रियों को गृह छोड़कर गृहविहीन जीवन में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाता है वह धर्म चिरस्थायी नहीं रह सकता। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा बुद्ध का स्त्रियों पर अधिक विश्वास न था, परंतु यह कटु आलोचना स्त्री के कामिनी रूप की ही है। बौद्ध साहित्य में हम अनेक सुयोग्य और सुशिक्षित स्त्रियों के भी उदाहरण पाते हैं। मिच्छुड़ी खेमा अपने समय की अत्यंत विदुषी स्त्री थी। उनकी विद्वता की प्रशंसा सुनकर स्वयं कौशलराज प्रसेनजीत सेवा में गया था। सुभद्रा नाम की दूसरी भिक्षुणी का संयुक्त निकाय में उल्लेख है। वह अपने व्याख्यान के द्वारा अमृत की वर्षा करती थी। जातक अमरा और उदम्बरा नामक विदुषी स्त्रियों का उल्लेख करते हैं। भद्रा कुंड केशा राजगृह के एक धनी सृष्टि की पुत्री थी। भिक्षुणी धर्म स्वीकार करने के पश्चात उसने अपनी विद्वता के कारण बड़ी ख्याति पाई थी। ठेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा रचित गीतों का संग्रह है। इनसे उनकी विद्वता, निष्प्रियता, पवित्रता और अंतः संतुष्टि प्रकट होती है। इन भिक्षुणियों में सुमा, सुमेधा और अनुपमा प्रसिद्ध हैं। जैन ग्रंथों में कौशाम्बी नरेश की विदुषी पुत्री जयंती का उल्लेख है। इसने महावीर स्वामी के साथ वाद विवाद किया था, तदुपरांत यह जैन धर्म में दीक्षित होकर भिक्षुणी हो गई थी। बौद्ध साहित्य से प्रकट होता है कि तत्कालीन वैश्याएं भी पर्याप्त रूप से शिक्षित और सुसंस्कृत होती थीं। इस संबंध में आम्रपाली का उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण है। यह वैशाली की प्रसिद्ध थी। वैशाली में गढ़ की संपत्ति या स्त्री रत्न थी। इसकी ख्याति को सुनकर स्वयं मगध नरेश बिंबिसार इससे मिलने वैशाली गया था। जब महात्मा बुद्ध वैशाली गए तो आम्रपाली ने उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। महात्मा बुद्ध ने इसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। भोजन करने के पश्चात महात्मा बुद्ध ने इसे उपदेश दिया। तदुपरांत आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध को एक आराम भेंट किया। विवाह बौद्ध साक्ष्यों से प्रकट होता है कि इस समय विवाह अधिकांशता वयस्कावस्था में ही होते थे। लड़कियों के लिए अवस्था लगभग 16 वर्ष पर मानी जाती थी। धम्मपद टीका का उल्लेख है कि इसी आयु में कन्याएं विवाह के लिए योग्य होती हैं। यद्यपि बौद्ध साहित्य में सगोत्र विवाह, मामा की पुत्री के साथ विवाह तथा स्वयं अपनी बहन के साथ विवाह के कतिपय उदाहरण भी मिलते हैं, परंतु इन सब को अपवाद स्वरूप ही समझना चाहिए। साधारणतः इस प्रकार के विवाह निंदनीय समझे जाते थे। विवाह के 8 प्रकारों में सबसे अधिक लोक प्रतिष्ठित प्रकार राजापत्य विवाह का था। इसमें लड़के लड़की का विवाह माता पिता के द्वारा नियोजित होता था, परंतु इस प्रणाली के अतिरिक्त अन्य प्रणालियों के भी उदाहरण मिलते हैं। कट्ठहारी जातक का कथन है कि वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त ने एक कन्या के रूप पर मुग्ध होकर उसके साथ गांधर्व विवाह कर लिया था। इसी प्रकार धम्मपत्ती का दचरका नामक कन्या के गांधर्व विवाह का वर्णन करती है। वत्स नरेश उदयन कावंती नरेश पद्धोत की कन्या वाशवदत्ता के साथ जो विवाह हुआ था वह भी गांधर्व था। कुछ स्वयंवर विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। उच्च जातक में एक कन्या के स्वयंवर का वर्णन है। कुलाल जातक में कंड नामक कन्या अपना स्वयंवर करती है। धम्मपद टीका के अनुसार असुरराज वेपचीति की कन्या ने अपना स्वयंवर विवाह किया था। बुद्ध काल में भी सजाती विवाहों की भी प्रधानता थी, परंतु कदा अंतर जाति विवाहों के भी उदाहरण मिलते हैं। दिव्यावदान एक शूद्र पुरुष और एक ब्राह्मण कन्या के विवाह का उल्लेख करता है। यह प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। कौशलराज प्रसेनजीत ने श्रावस्ती के मालाकार की कन्या मल्लिका के साथ अनुलोम विवाह किया था। शिक्षा बौद्ध धर्म निवृत्ति मार्गी था, अतः उसने भिक्षु जीवन कल्याण कर बताया था। बौद्ध भिक्षु स्थान स्थान पर बने अपने विहारों में रहते थे। ये विहार उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, यही उनके शिक्षा केंद्र भी थे। इनमें भिक्षु अपने धर्म का अध्ययन, अध्यापन, मनन, पाठ आदि करते थे। यह शिक्षा नितांत सांप्रदायिक थी। बौद्धों की संघ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिष्य को सिद्धि विहारिक और आचार्य को उपाध्याय कहते थे। उपाध्याय होने के लिए प्रत्येक के लिए यह आवश्यक था कि वह कम से कम 10 वर्ष तक भिक्षु जीवन व्यतीत कर चुका हो। शिष्यत्व ग्रहण करने के समय नवागत का एक संस्कार होता था जिसे तपज्जा कहते थे। साथ में उसे बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट करना पड़ता था। महावग्य में गुरु शिष्य के परस्पर संबंध पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। शिष्य नियमित रूप से अपने गुरु की सेवा शुश्रूषा करता था और गुरु पूर्ण रूप से उसके शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए उत्तरदायी था। गुरु को अपने शिष्यों को शारीरिक दंड देने का भी अधिकार था। जातकों से प्रकट होता है कि दंड अथवा अपराधी शिष्य को गुरु छड़ी लात तथा थप्पड़ से भी मारता था। जातकों तथा अन्य बौद्ध ग्रंथों में लौकिक शिक्षा के विषय पर भी काफी प्रकाश पड़ता है। इस समय वाराणसी और तक्षशिला अपनी शिक्षा संस्थाओं के लिए विशेष प्रसिद्ध थी। इन नगरों के आचार्य वेदों तथा 18 शिल्पों की शिक्षा देते थे। जातकों से प्रकट होता है कि तक्षशिला में चिकित्सा शास्त्र, धनुर्विद्या, राजविद्या, पशु भाषा ज्ञान, आखेट तथा अनेक शिल्पादि की शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थी दोनों प्रकार के होते थे, छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले और अपने घरों में रहते हुए एकमात्र पढ़ने के समय विद्यालय आने वाले। आचार्य पढ़ाने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी से फीस लेता था। ऐसे विद्यार्थी को आचार्य भागदायिका कहते थे। परंतु अनेक निर्धन विद्यार्थी ऐसे भी होते थे जो फीस के बदले दिन को अपने आचार्य का सेवा कार्य करते थे और रात को उनसे पढ़ लेते थे। ऐसे विद्यार्थी धम्मंतवाशिका कहलाते थे। शिक्षा संस्थाओं में छात्रों का जीवन सरल और अनुशासनशील था। वहाँ निर्धन और धनी विद्यार्थियों का आचार आहार एक सा ही होता था। शिक्षा संस्थाओं को राजकीय सहायता भी मिलती थी, परंतु अधिकांशतः उनका अस्तित्व सार्वजनिक दान दक्षिणा के ऊपर निर्भर था। बहुधा पड़ोसी निवासी शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों को भोजन वस्त्र आदि देते रहते थे। कुछ शिक्षा संस्थाएं सार्वजनिक न होकर वर्ग विशेष के लिए होती थीं। जातकों से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और राजकुमारों के पृथक पृथक शिक्षा संस्थाओं के उल्लेख मिलते हैं। जातकों से प्रकट होता है कि तक्षशिला अथवा वाराणसी के विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थी की आयु कम से कम 16 वर्ष की होनी चाहिए थी, परंतु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम कितने वर्ष का होता था। महावाग से प्रकट होता है कि जीवक ने तक्षशिला में 7 वर्ष तक चिकित्सा शास्त्र में शिक्षा पाई थी। जातकों से प्रकट होता है कि प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी अधिकांशतः ब्राह्मण और क्षत्रिय भी होते थे। वैश्य विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी। चांडालों के लिए तो प्रवेश पूर्ण रूप से निषिद्ध था। प्रमुख विद्यालयों में प्रधानाचार्य के अतिरिक्त सहायक आचार्य भी होते थे, उन्हें पिट्ठी आचार्या कहते थे। कभी कभी पुराने और अनुभवी विद्यार्थी भी पढ़ाने में अपने आचार्य की सहायता करते थे। ग्राम बौद्ध साहित्य से प्रकट होता है कि इस समय तक भारतवर्ष में स्थान स्थान पर समृद्धिशाली ग्रामों का उदय हो चुका था। ग्रामों में ईंट, मिट्टी, पत्थर और लकड़ी की सहायता से बने हुए बहुसंख्यक मकान होते थे। इन मकानों में सम्मिलित परिवार रहते थे। मकानों के अतिरिक्त गांवों में खेत होते थे। सामान्यतया खेत मनुष्य की व्यक्तिगत संपत्ति समझा जाता था, परंतु बहुधा ग्राम पंचायत की आज्ञा के बिना वह मनुष्य उसे बेच नहीं सकता था। ग्रामों का जीवन सरल और संतोषमय था। वहां के मनुष्य न अधिक धनी होते थे और न अधिक निर्धन। प्रायः प्रत्येक ग्राम आत्मनिर्भर था, उसकी आवश्यकताएं कम थी और उनकी पूर्ति उसी की सीमाओं के भीतर हो जाती थी। सहकारिता और वस्तु विनिमय के आधार पर मनुष्यों ने अपना जीवन सुविधाजनक बना लिया था। ग्रामों में लड़ाई झगड़े तथा अन्य अपराध कम होते थे और उनका निर्णय ग्राम पंचायतों में ही हो जाता था। ग्राम के चारों ओर चारागृह होते थे। ये संपूर्ण ग्राम के संपत्ति समझे जाते थे। यहाँ ग्राम निवासियों के पशु निर्बाध रूप से चरते थे। इन्हें चराने के लिए ग्वाले होते थे। चारागृह के आगे बहुधा वन होते थे, परंतु ईस्वीपूर्व 6 शताब्दी तक आते आते वन का विस्तार कम होता जा रहा था। उन्हें काट काट कर मनुष्य अपने ग्रामों की स्थापना करते जा रहे थे। बुद्ध काल में हम साधारण ग्रामों के अतिरिक्त व्यवसायिक ग्रामों का भी उल्लेख पाते हैं। समान व्यवसाय का अनुसरण करने वाले मनुष्य बहुधा एक ही ग्राम में रहते थे। बौद्ध साहित्य कुम्हारों, बढ़इयों, शिकारियों, चंडालों आदि के ग्रामों का उल्लेख करता है। नगर इस समय तक भारतवर्ष में नागरी सभ्यता का भी पर्याप्त उदय हो रहा था। स्थान स्थान पर नगरों का उदय हो रहा था। नगरों में कच्चे मकान के स्थान पर पक्के मकानों का बाहुल्य होता था। बहुधा ये मकान कई मंजिल ऊंचे होते थे। 7 मंजिल वाले मकानों को सप्तभूमक प्रासाद कहते थे। बड़े मकानों में स्तंभ, गवाक्ष, वातायन, नालियां, कुएं, पाकशाला, स्नानगृह तथा शौचालय आदि की पृथक पृथक व्यवस्था होती थी। बहुधा दीवारों पर प्लास्टर भी होता था। कभी कभी दीवारों को अनेक प्रकार के चित्रों से सजाया जाता था। दीर्घ निकाय निम्न 6 नगरों का उल्लेख करता है। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी। इनके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य मिथिला, वैशाली, कांपिल्य, पाटलिपुत्र, उज्जैन, शाकल, पैठान और महिष्मति आदि नगरों का उल्लेख करता है। बड़े बड़े नगरों की निर्माण योजना बड़े ढंग से बनाई जाती थी। उनमें सुंदर भवन, उद्यान, बाजार तथा सड़कें होती थीं। कभी कभी नगरों के चारों ओर चहर दीवारी भी होती थी। किसी किसी नगर में दुर्ग भी होता था। विभिन्न व्यवसाय बुद्ध काल में कपड़े का व्यवसाय काफी समृद्ध था। जातकों से प्रकट होता है कि सूत काटने का काम प्रायः स्त्रियां करती थीं। कपड़ा बुनने वाले को तंतुवाय कहते थे। कपड़े सूती, ऊनी और रेशमी सभी प्रकार के होते थे। विनय पिटक से प्रकट होता है कि शिवी देश अपने सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। गांधार में ऊनी कपड़ों का व्यवसाय अधिक समृद्ध था और वाराणसी में रेशमी कपड़ों का लोहे का काम करने वाले कम्मार कहलाते थे। ये हल, कुदाल, पावड़े, हथौड़े, हशिया, छुरे, चाकू तथा अन्य अन्य प्रकार के लोहे के बर्तन बनाते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे, अतः आभूषण बनाने का व्यवसाय भी बड़ा उन्नत था। बौद्ध साहित्य माला, मेखला, कुंडल, केयूर, चूड़ामणि, मुद्रिका आदि आभूषणों का उल्लेख अनेकशा करता है। ये आभूषण सोने, चांदी, मोती, हीरे, हाथी दांत आदि से बनते थे। काठ का काम करने वाले वर्धकी कहलाते थे। ये गाड़ियां, दरवाजे, खिड़कियां तथा विविध फर्नीचर तैयार करते थे। जातकों में वर्धकी ग्राम का भी वर्णन आता है। हाथी दांत का काम करने वाले हस्ती दंतकार कहलाते थे। उनकी अपनी विधियां थी। इस काम के लिए वाराणसी विशेष प्रसिद्ध था। पत्थर का काम करने वाले पाषाण कोहक कहलाते थे। कुंभकार आधुनिक कुम्हार था। यह चौक की सहायता से अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाता था। सूख जाने पर ये आग में पकाए जाते थे। बहुधा कुंभकार गांवों के बाहर रहते थे। बुद्ध काल पुष्पों, मालाओं, इत्र और तेल आदि के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। अतः स्वाभाविक था कि इस समय मालाकार का व्यवसाय बड़ा उन्नत था। वह उद्यानों की देखरेख करता, पुष्प चयन करता, उनके गुलदस्ते तथा मालाएं बनाना और सुगंधित इत्र तेल बनवाने के लिए चंदन, पुष्प पत्र तथा मूल आदि गंधिकों के पास भेजता था। नलकार अपनी बांस की टोकरी आदि के लिए और चर्मकार कपड़े के काम के लिए प्रसिद्ध थे। रंगरेज, हिंगुलक, हड़ताल आदि के प्रयोग से अनेक रंगों में कपड़े रंगते थे। इसके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य निम्नलिखित अन्य व्यवसायों का भी वर्णन करता है। वैद्य, ज्योतिषी, नट, नापित, सूद, रजक, शिकारी, बूचड़, नाविक, गायक, लेखक, पुरोहित आदि। बौद्धा व्यवसायियों ने अपने अपने संगठन बना लिए थे। प्रत्येक श्रेणी के अपने अपने नियम थे, जिन्हें राज्य भी मानता था। ये श्रेणियां अपने सदस्यों की सामग्री के निर्माण, क्रय विक्रय, लाभ हानि आदि के विषय में अनेक प्रकार के नियम बनाती थी। झगड़ों निर्णय करने के लिए श्रेणियों के अपने न्यायालय थे। श्रेणी के मुखिया को प्रमुख अथवा जेठक कहते थे। एक जातक का कथन है कि 500 बड़े परिवारों का एक जेठक था। इसी प्रकार एक दूसरे जातक में 100 कम्मार परिवारों का एक जेठक बतलाया गया है। जातकों में 18 श्रेणी समूहों का उल्लेख मिलता है। धीरे धीरे श्रेणी के सदस्यों ने अपने भीतर ही खान पान और विवाह संबंध करना प्रारंभ कर दिया। तभी से उनकी व्यावसायिक जातियां बनने लगी। इस समय तक व्यवसायों का स्थानीयकरण हो चुका था। समान व्यवसाय का अनुसरण करने वाले व्यक्ति एक ही स्थान पर रहते थे। एक जातक में एक बड़े ग्राम का वर्णन है। इसमें बड़ियों के 1000 परिवार रहते थे। भिन्न भिन्न नगरों में कुम्हारों, लुहारों और हाथी दांत का काम करने वालों की अपनी अपनी गलियां थी। इन्हें पीथी कहते थे। बौद्धा व्यवसाय परंपरागत होते थे। उदाहरण के लिए एक लुहार अपने पुत्र को बचपन से ही अपने व्यवसाय की शिक्षा देने लगता था। इस प्रणाली का परिणाम यह होता था कि वैश्यक होते होते वह पुत्र अपने पैतृक व्यवसायों की बारीकियों को भली भांति समझ जाता था। इस प्रकार व्यवसाय प्रत्येक परिवार की पैतृक संपत्ति समझा जाता था। व्यापार, बौद्ध साहित्य इस समय के व्यापार के ऊपर भी अच्छा प्रकाश डालता है। वह व्यापार स्थली और जली दोनों मार्गों से होता था। देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र मार्गों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन पर व्यापारियों के काफिले अपने सामान के साथ आते जाते थे। यह सामान बैलगाड़ियों द्वारा ढोया जाता था। कभी कभी अपने साथ रक्षक भी रखते थे। निश्चित स्थानों पर इन्हें चुंगी देना पड़ता था। स्थल मार्गों के अतिरिक्त नदी मार्ग भी यातायात के साधन थे। इन पर छोटी बड़ी नावों के सहारे माल ढोया जाता था। रिच डेविस महोदय ने अपने बुद्धिस्ट इंडिया नामक ग्रंथ में 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है। प्रथम मार्ग सावस्ती से प्रारंभ होकर महिष्मती, उज्जैन, विदिशा, कौसाम्बी और साकेत होता हुआ प्रतिष्ठान जाता था। दूसरा मार्ग सावस्ती से प्रारंभ होकर कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, वैशाली और पाटलिपुत्र होते हुए राजगृह जाता था। तृतीय मार्ग गंगा और यमुना नदियों का जल मार्ग था। इसके अतिरिक्त अन्य भी मार्ग थे। इनमें एक मिथिला से काश्मीर और गांधार तक जाता था। दूसरा मार्ग राजपुताना से मरुस्थल होता हुआ सौवीर प्रदेश को जाता था। पूर्व में एक अन्य मार्ग वाराणसी से स्वर्ण भूमि को जाता था। व्यापारिक मार्ग सदैव सुरक्षित न होते थे। शक्ति गुम्प जातक में एक चोरों के ग्राम का उल्लेख है। इसमें 500 चोर रहते थे। ये मार्ग में व्यापारियों को लूट लेते थे। इसी से अपनी रक्षा के लिए कभी कभी व्यापारी अपने साथ सशस्त्र रक्षक रखते थे। बलाहस्य जातक ताम्रपर्णी की, महाजनक जातक स्वर्ण भूमि की और सुधारक जातक बेबीलोन तथा मिश्र आदि पश्चिमी देशों की व्यापारिक यात्रियों का वर्णन करते हैं। पश्चिमी भारत में मरुकच्छ और सुधारक विदेशी व्यापार के दो प्रमुख बंदरगाह थे। कभी कभी व्यापारी 500-500 गाड़ियों को लेकर चलते थे। इतने बड़े कारवा का नेता शार्थवाह कहलाता था। व्यापार द्वारा अपार धन पैदा करते हुए अनेक सृष्टियों का बौद्ध साहित्य में वर्णन है। अनाथ पिंडक शास्त्री का एक प्रसिद्ध सृष्टि था। संभवतः व्यापारी वर्ग की ओर से राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व करता था। निगम गांव व्यापारी केंद्र थे तथा जहाँ अनेकानेक स्थानों की उत्पन्न की हुई वस्तुएं विक्रय के लिए आती थीं। बड़े बड़े बाजारों के अतिरिक्त फेरी वाले अपने सामान को गधे, गाड़ियों आदि पर लादे हुए गली गली घूमते रहते थे। अर्थनीति ईसवीपूर्व 6वीं शताब्दी का काल अर्थनीति का काल है। इस समय तक आते आते वस्तु विनिमय की पद्धति बड़े पैमाने पर होने वाले व्यापार व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त हो गई। अतः मुद्रा के माध्यम का प्रचार हुआ। मुद्राओं में काशार्पण प्रमुख है या तांबे का होता था और इसकी तौल 146 ग्रेन होती थी। इस समय मनुष्य के व्यापारिक जीवन में जटिलता आ गई थी। अतः हम बैंक, ब्याज, साझा आदि पद्धतियों के उदय के भी उल्लेख पाते हैं। दैनिक जीवन, मनुष्य सम्मिलित परिवारों में रहते थे। उनका जीवन सामान्यतया सरल, सुस्वादु और संतोषपूर्ण था। परिवार में माता पिता का आदर होता था। उन्हें पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध करने के लिए सदैव ध्यान रहता था। जातकों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पिता द्वारा पुत्रों के विदेश भेजने के उल्लेख मिलते हैं। बहुधा वह उनके विवाह भी नियोजित करते थे। साधारण मनुष्य एक पत्नी खोता था। यद्यपि राजवंश और धनी वर्ग में बहुपत्नीता प्रतिष्ठित थी, स्त्रियों में पर्दा की प्रथा न थी। बौद्ध साहित्य में पुरुषों के साथ भिक्षुणियों के उदाहरण मिलते हैं। जयंती ऐसी विदुषी स्त्रियां तो सार्वजनिक विवादों में भी भाग लेती थीं। साधारणतया मनुष्य सूती कपड़े पहनते थे। यद्यपि ऊनी और रेशमी कपड़ों का प्रचुर प्रचार था। कपड़े प्रायः बिना सिले हुए पहने जाते थे। इस समय तक स्त्री पुरुषों की वेशभूषा में विशेष अंतर न था। दोनों ही सिरोभूषा और आभूषण धारण करते थे। बौद्ध साहित्य में अनेक प्रकार की मेखलाओं और जूतों के उल्लेख मिलते हैं। निर्धन मनुष्य लकड़ी के खड़ाऊ पहनते थे, परंतु धनी वर्ग में अनेक पशुओं के चमड़े, बाल और ऊनी के जूते धारण करते थे। कभी कभी जूतों में सोने चांदी का काम भी किया जाता था अथवा उन पर मोती मूंगे जड़ दिए जाते थे। साधारणतः दैनिक जीवन में गेहूं, जौ, चावल, तिल, दालें, फल, दूध, दही, घी, मट्ठा, मधु, तेल, मांस और मछली का प्रयोग किया जाता था। देश में मदिरा का भी प्रचलन था। धनी घरों में अनेक प्रकार की विलास की सामग्री पाई जाती थी। उनकी छतों पर आच्छादन और खिड़कियों दरवाजों पर पर्दे होते थे। दीवारें नाना प्रकार के चित्रों से अलंकृत रहती थी। कमरों में मेज, कुर्सी, तिपाई, पलंग, सोफा आदि पाए जाते थे। इन पर गद्दे, गदिया, दरिया, चटाइयों आदि का भी प्रयोग होता था। घरों में सोने, चांदी, तांबे, कांसे, शीशे तथा हाथी दांत के अनेक बर्तन होते थे। मनोविनोद के लिए मनुष्य उत्सव और समाज करते थे। बहुधा विहार यात्राओं पर जाते थे। वे घुड़दौड़, रथ दौड़, मलयुद्ध और तीरबाजी भी में भाग लेते थे। घरेलू खेलों में पाशे का प्रयोग अधिक प्रचलित था। साधारण व्यक्ति नटों, मदारियों और जादूगर आदि के खेल देखकर अपना मनोरंजन करते थे। नगरों में नृत्य, संगीत और नाटकों के सामूहिक आयोजन भी होते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि निवृत्ति मार्गी धर्मों के प्रचार के होते हुए भी साधारण जनता का जीवन के प्रति अनुराग था और वह अनेक प्रकार के खेल कूदों और मनोविनोदों से अपने जीवन के उल्लास को बढ़ाने के प्रयत्न करती थी।